एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे शख्स के जीवन की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनका नाम इतिहास में शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, विंस्टन चर्चिल।
जी हाँ,
और इसके लिए हम सर मार्टिन गिलबर्ट की मशहूर किताब चर्चिल अ लाइफ का सहारा ले रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि वो विक्ट्री साइन और सिगार वाले चर्चिल के पीछे की कहानी क्या है।
बिल्कुल। और गिलबर्ट की किताब, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक जीवनी नहीं है, वो चर्चिल के आधिकारिक जीवनी कार थे।
अच्छा,
तो उनकी पहुंच लाखों दस्तावेजों तक थी। ये किताब उनके जटिल व्यक्तित्व, उनकी नाकामियों और फिर जबरदस्त वापसी करने की उनकी क्षमता, उनकी दूरदर्शिता, इन सब का एक बहुत ही प्रामाणिक ब्यौरा देती है।
तो हम सिर्फ उस प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का नेतृत्व किया।
नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति जो अक्सर विवादों में रहे, कई बार राजनीति में किनारे कर दिए गए, आखिर उनमें वो हिम्मत, वो नज़र और वो बोलने की ताकत कहाँ से आई कि 1940 में जब नाजी जर्मनी का खतरा सर पर था तो वो अकेले खड़े हो गए और दुनिया को प्रेरित किया।
यही यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। और आज उनकी कहानी क्यों जरूरी है?
हाँ, क्यों?
शायद इसलिए कि उनका जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलों का सामना कैसे करें, नेतृत्व असल में होता क्या है, और कैसे एक अकेला इंसान भी इतिहास का रुख मोड़ सकता है।
तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। गिलबर्ट के मुताबिक चर्चिल के शुरुआती साल, उनका बचपन कैसा था, क्या वही उनके व्यक्तित्व की जड़ें थीं?
हाँ, गिलबर्ट बताते हैं कि बचपन भव्य था, मतलब ब्लेनहम पैलेस जैसी जगहों पर पले बढ़े, लेकिन भावनात्मक रूप से अकेलापन था।
अकेलापन?
हाँ, माता पिता, खासकर उनके पिता लॉर्ड रैंडोल्फ, जो खुद बड़े नेता थे, उनसे थोड़ी दूरी रही, और इस कमी ने, कह सकते हैं, उनमें जिंदगी भर खुद को साबित करने और पहचान पाने की एक जबरदस्त इच्छा पैदा की।
और पढ़ाई लिखाई में कैसे थे स्कूल में?
स्कूल में जैसे हैरो में या फिर सैंडहर्स्ट मिलिट्री अकेडमी में, वो कोई बहुत होनहार छात्र नहीं गिने जाते थे, औसत दर्जे के।
अच्छा, तो फिर ये आगे कैसे बढ़े, अकेडमिक रूप से औसत होने के बाद भी?
उनमें एक अलग तरह की बुद्धि थी और हिम्मत बहुत थी। गिलबर्ट दिखाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे रास्ते चुने जिनमें जोखिम था,
जैसे?
जैसे सेना में जाना या फिर युद्ध संवाददाता बनकर क्यूबा, भारत, सूडान जाना। ये सिर्फ रोमांच के लिए नहीं था, ये एक सोचा समझा तरीका था लोगों की नजरों में आने का, अपनी पहचान बनाने का।
और वो बोर युद्ध वाला किस्सा दक्षिण अफ्रीका में, जब वो पकड़े गए और फिर भाग निकले?
हाँ बिल्कुल, वो कैद और फिर वो नाटकीय फरारी, उसने उन्हें रातों रात पूरे देश का हीरो बना दिया।
जबरदस्त।
और इसी शोहरत का फायदा उठाकर वो 1900 में संसद पहुंच गए। पर कहानी यहां भी सीधी नहीं है।
अच्छा,
संसद पहुंचने के बाद भी उतार चढ़ाव।
हाँ।
वो कंजर्वेटिव पार्टी से आए थे, लेकिन कुछ ही सालों में, 1904 में, वो लिबरल पार्टी में चले गए। मुक्त व्यापार जैसे मुद्दों पर असहमति थी। गिलबर्ट मानते हैं कि ये उसूल और महत्वाकांक्षा दोनों का मिलाजुला कदम था।
पार्टी बदल ली।
और फिर
और
हैरानी की बात यह है कि लिबरल सरकार में मंत्री बनकर उन्होंने सामाजिक सुधारों पर काम किया। सोचिए, एक अमीर घराने का नेता, और वो रोजगार दफ्तर, बेरोजगारी बीमा, न्यूनतम मजदूरी जैसे कानून बनवा रहा है।
ये तो वाकई विरोधाभास है।
और फिर नौसेना का जिम्मा संभाला उन्होंने।
हाँ।
1911 में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी बने। यूरोप में माहौल गरमा रहा था और उन्होंने नौसेना को आधुनिक बनाने पर बहुत जोर दिया।
जहाजों को कोयले से तेल पर लाना,
नौसेना के लिए हवाई जहाज विकसित करना,
वाह।
वो भविष्य देख रहे थे।
तैयारी कर रहे थे।
बिल्कुल। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी ठोकर लगी।
गैलीपली, प्रथम विश्व युद्ध।
हाँ, 1915 का गैलीपली अभियान, चर्चिल इसके मुख्य योजनाकार थे, और ये अभियान एक भयानक विफलता साबित हुआ। बहुत जाने गई,
और इसका अंजाम?
उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म मान लिया गया। लोग कहने लगे कि बस अब चर्चिल खत्म।
ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। यहां से कोई कैसे वापसी कर सकता है?
यही है, यही चर्चिल का वो असाधारण लचीलापन, जिसे गिलबर्ट बार बार दिखाते हैं, सामने आता है। वो टूटे नहीं, गायब नहीं हुए।
तो क्या किया उन्होंने?
वो 40 की उम्र में वापस सेना में चले गए और पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस में एक बटालियन की कमान संभाली, खाइयों में लड़े।
खुद लड़े?
हाँ, खुद। इससे उन्होंने न सिर्फ अपनी हिम्मत फिर साबित की, बल्कि आम सैनिकों की मुश्किलों को बहुत करीब से समझा, और इसी अनुभव ने उनकी वापसी की जमीन तैयार की। युद्ध खत्म होने के बाद वो फिर सरकार में लौटे, अलग अलग मंत्री पद संभालें, और यहाँ तक के मध्य पूर्व के नक्शे को दोबारा बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही।
ये उतार चढ़ाव तो कमाल के हैं। युद्ध के बाद वो फिर कंजर्वेटिव पार्टी में लौट आए और चांसलर भी बने।
जी हाँ, 1924 में वापसी हुई कंजर्वेटिव पार्टी में और चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री बने। उनका ब्रिटेन को वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पर लाने का फैसला काफी विवादास्पद रहा था।
और फिर आया वो दौर जिसे विल्डरनेस ईयर्स कहते हैं, मतलब राजनीति से बाहर।
बिल्कुल, 1930s का दशक उनके लिए एक तरह का राजनीतिक वनवास था। वो सरकार से बाहर थे, कई मुद्दों पर जैसे भारत की आजादी के सवाल पर वो अपनी ही पार्टी से अलग राय रखते थे।
और सबसे अहम बात, हिटलर को लेकर उनकी चेतावनी।
हाँ, और यही उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। जब ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारें हिटलर को खुश करने की कोशिश कर रही थीं, जिसे तुष्टीकरण या अपीजमेंट कहते हैं,
हाँ हाँ,
तब चर्चिल लगभग अकेले ही चेतावनी दे रहे थे कि ये नीति खतरनाक है, हिटलर रुकेगा नहीं और ब्रिटेन को अपनी सैन्य तैयारी करनी चाहिए। गिलबर्ट उन्हें कोई युद्ध भड़काने वाला नहीं मानते, बल्कि एक यथार्थवादी मानते हैं जिनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
और जब उनकी बातें सच साबित हुई, मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ।
बिल्कुल, 1939 में जैसे ही युद्ध छिड़ा, उन्हें तुरंत नौसेना प्रमुख यानी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी के पद पर वापस बुलाया गया। उनकी जरूरत महसूस हुई
और फिर प्रधानमंत्री बने।
हाँ, मई 1940 में। हालात बहुत नाजुक थे, फ्रांस हार की कगार पर था, ब्रिटेन अकेला पड़ रहा था, और तब 65 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने।
और उनका वो मशहूर भाषण, खून, मेहनत, आंसू और पसीना।
जी हाँ, उस भाषण ने जैसे पूरे देश को एक कर दिया उस मुश्किल घड़ी में।
वो दौर तो इतिहास बन गया, बैटल ऑफ ब्रिटेन, लंदन पर बमबारी, यानी ब्लिट्स के दौरान लोगों का हौसला, अमेरिका के साथ वो खास रिश्ता बनाना, रूस के स्टालिन के साथ वो मुश्किल लेकिन जरूरी गठबंधन,
ये सब उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता को दिखाते हैं। गिलबर्ट इसका बहुत जीवंत वर्णन करते हैं, लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है।
क्या?
1945 में जैसे ही युद्ध जीता, वो चुनाव हार गए।
है, युद्ध जिताने वाला प्रधानमंत्री चुनाव हार गया, ये कैसे हुआ?
हाँ, लेबर पार्टी जीत गई। ये सबके लिए, शायद चर्चिल के लिए भी एक बड़ा झटका था। लोग शायद युद्ध के बाद बदलाव चाहते थे, सामाजिक सुधार चाहते थे।
लेकिन वो रुके नहीं होंगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष के नेता बने। 1946 में अमेरिका के फुल्टन शहर में वो प्रसिद्ध भाषण दिया जिसमें उन्हें लौह पर्दे, आयरन कर्टन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने शीत युद्ध की शुरुआत को परिभाषित किया।
अच्छा, वो भाषण भी उन्होंने ही दिया था।
जी, फिर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध पर अपना 6 खंडों का विशाल इतिहास लिखा,
जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला।
हाँ, 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और फिर 1951 से 1955 तक वो एक बार फिर प्रधानमंत्री रहे,
दोबारा प्रधानमंत्री बने।
हाँ, और 1965 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो वो सिर्फ ब्रिटेन के नहीं बल्कि दुनिया के एक महान नेता माने जा चुके थे। उनकी विरासत, कह सकते हैं, ब्रिटेन के उद्धारकर्ता और 20वीं सदी के महानायक के रूप में पक्की हो चुकी थी।
इस पूरी जिंदगी को देखें, इतना कुछ तो। गिलबर्ट के हिसाब से चर्चिल को चलाने वाली अंदरूनी शक्ति क्या थी, उनके मूल विश्वास क्या थे?
देखिए, कई चीजें थीं।
हाँ,
सबसे पहली बात तो वो हार मानने वालों में से नहीं थे। असाधारण लचियापन, जिसे अंग्रेजी में रेजिलियंस कहते हैं। दूसरी चीज, उन्हें भाषा की ताकत पर अटूट विश्वास था। उनके लिए भाषण सिर्फ शब्द नहीं थे, वो हथियार थे, रणनीति का हिस्सा थे। इनसे उन्होंने पूरे देश का हौसला बुलंद किया।
सही बात है, उनके भाषण आज भी याद किए जाते हैं।
बिल्कुल। तीसरी बात, उनमें भविष्य देखने की क्षमता थी और उस पर टिके रहने की हिम्मत, खासकर 1930 के दशक में जब नाजीवाद के खिलाफ वो लगभग अकेले खड़े थे।
गिलबर्ट उनके विरोधाभासों पर भी जोर देते हैं ना?
हाँ, बिल्कुल, वो विरोधाभासों का पुलिंदा थे, कह सकते हैं। एक तरफ ऊंचे खानदान से थे, दूसरी तरफ मजदूरों के लिए सामाजिक सुधारों की वकालत की।
हाँ।
एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के पक्षधर थे, दूसरी तरफ यूरोप के देशों की आजादी के लिए लड़े। इतिहास में डूबे रहते थे, लेकिन टैंक और रडार जैसे नए वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा दिया।
और वो ब्लैक डॉग वाली बात, उनका अवसाद।
हाँ, वो अपने ब्लैक डॉग, जैसा वो खुद कहते थे, यानी गहरे अवसाद के दौर से जूझते थे, लेकिन इसके बावजूद उनमें काम करने की असीम ऊर्जा दिखती थी।
ये दिखाता है कि महान लोग भी अंदरूनी लड़ाइयां लड़ते हैं।
बिल्कुल, और शायद यही चीज उन्हें और ज्यादा मानवीय बनाती है। उन्हें यह भी लगता था कि नियति ने उन्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है, खासकर 1940 के संकट के लिए, और अमेरिका के साथ ब्रिटेन के खास रिश्ते में उनका गहरा यकीन था।
और इन सब के पीछे कोई एक मूल विचार?
गिलबर्ट के अनुसार, इन सब के मूल में मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता के प्रति एक गहरी आस्था थी, और यही चीज उन्हें हर तरह की तानाशाही, चाहे वो हिटलर की हो या स्टालिन की, उसका कट्टर विरोधी बनाती थी।
अब अगर हम उनके जीवन के निर्णायक मोड़ों की बात करें, गिल्बर्ट किन तीन घटनाओं को सबसे अहम मानते हैं जिन्होंने चर्चिल की जिंदगी का रुख बदल दिया?
देखिए, जीवन तो कई मोड़ों से बनता है, लेकिन अगर तीन सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी चुनने हों तो पहला शायद गैलीपोली 1915 की नाकामी ही होगी।
नाकामी? ये परिवर्तनकारी कैसे हुई?
इसलिए क्योंकि ये उनके लिए एक सार्वजनिक अपमान था, करियर की तबाही थी, लेकिन इसने उनकी वापसी करने की जबरदस्त क्षमता को उजागर किया। वो भागे नहीं, मोर्चे पर जाकर लड़े, अपनी हिम्मत साबित की और युद्ध की असलियत को समझा। इसने उन्हें शायद ज्यादा परिपक्व बनाया।
ये एक अलग नजरिया है। दूसरा मोड़?
दूसरा मोड़ मैं कहूंगा वाइल्डनेस ईयर्स, यानी 1930s का दशक, जब वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे।
हाँ, जब वो हिटलर के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे।
बिल्कुल। ये परिवर्तनकारी क्यों था? क्योंकि जब उनकी चेतावनियां सच साबित हुई और तुष्टीकरण की नीति फेल हो गई, तो चर्चिल ही एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे जो उस असफलता के दाग से बचे हुए थे। उनकी बात में वजन था, इसी वजह से मई 1940 में वो नेतृत्व के लिए सबसे स्वाभाविक और विश्वसनीय पसंद बनकर उभरे।
अच्छा, तो उस अकेलेपन ने ही उन्हें बाद में आगे बढ़ाया।
एक तरह से हाँ, ये दिखाता है कि कई बार अलोकप्रिय होते हुए भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना कितना जरूरी हो सकता है।
और तीसरा सबसे अहम मोड़ कौन सा था?
तीसरा और शायद सबसे ज्यादा निर्णायक, मई 1940 में उनका प्रधानमंत्री बनना, जब ब्रिटेन अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, हार का खतरा सामने था।
हाँ?
ये परिवर्तनकारी क्यों था? गिल्बर्ट दिखाते हैं कि ये जैसे उनके पूरे जीवन की तैयारी का नतीजा था। उनका सेना का अनुभव, सरकार चलाने का तजुर्बा, इतिहास की समझ, वो राजनीतिक वनवास का दौर, उनकी जिद, सब कुछ जैसे उसी एक पल के लिए इकट्ठा हो गया था। ऐसा लगा मानो वो इसी क्षण के लिए बने थे।
ये तीन मोड़ वाकई उनके जीवन को आकार देते नजर आते हैं। अच्छा, चर्चिल के इस असाधारण उतार चढ़ाव भरे जीवन से आज हम क्या सीख सकते हैं? कुछ मानवीय सबक जो आज भी काम के हों।
हाँ, कई सबक हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा, असफलता आखिरी नहीं होती। चर्चिल की जिंदगी तो इसी का सबूत है। गैलीपोली जैसी बड़ी नाकामी के बाद भी उन्होंने वापसी की, तो हार से सीखना और आगे बढ़ना।
ये तो बहुत जरूरी सबक है। और
दूसरा, मुश्किल वक्त में साफ, सीधी और हौसला देने वाली बातचीत का महत्व। चर्चिल के शब्दों में ताकत थी। उन्होंने 1940 में ब्रिटेन को सच बताया, लेकिन उम्मीद भी जगाई।
हाँ, उनका संवाद कौशल तो लाजवाब था।
बिल्कुल। तीसरा, जिंदगी भर सीखते रहने की अहमियत। चर्चिल हमेशा पढ़ते थे, लिखते थे, इतिहास से सीखते थे, नई तकनीकों को समझते थे। ये तैयारी उन्हें मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद करती थी।
और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस, जैसा आपने 1930 के दशक के बारे में बताया।
हाँ, वो भी, भले ही आपकी बात कोई ना सुन रहा हो, अगर आपको यकीन है तो उस पर डटे रहना। और एक और बात, व्यक्तिगत संघर्षों से निपटना।
वो ब्लैक डॉग वाली बात?
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के साथ भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, और शायद एक मजबूत मकसद, एक लक्ष्य, आपको निराशा से लड़ने में मदद करता है। अंत में उनके जीवन से नेतृत्व में नैतिक स्पष्टता और इतिहास की समझ का महत्व भी पता चलता है।
तो मार्टिन गिल्बर्ट की इस गहरी पड़ताल से अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, तीन अंतिम निष्कर्ष, तो वो क्या होंगी?
ठीक है, अगर तीन मुख्य निष्कर्षों की बात करें, पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। महानता अक्सर मुश्किलों से लड़कर ही निखरती है, सिर्फ उनके बावजूद नहीं। मतलब निजी संघर्ष और सार्वजनिक असफलताएं भी आपके चरित्र को मजबूत बना सकती हैं, आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सकती हैं। चर्चिल का जीवन दिखाता है कि इंसान का जज्बा कितना लचीला हो सकता है। दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। भविष्य को देखने की कोशिश करना, यानी दूरदर्शिता, और इतिहास से सीखना, ये नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी औजार हैं। आने वाले खतरों को पहचानना और मुश्किल सच्चाइयों का सामना करना, जैसा चर्चिल ने नाजीवाद के साथ किया, बड़ी तबाही को रोक सकता है। और हाँ, शब्दों और विचारों में वाकई दुनिया बदलने की ताकत होती है।
सही कहा।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। लगे रहना, यानी दृढ़ता, और अपने विश्वासों पर टिके रहने का साहस, भले ही आपका रास्ता अकेला हो और मुश्किलों भरा क्यों ना हो, यह आखिरकार मायने रखता है। चर्चिल की जिंदगी का सार शायद यही है। कितनी भी बुरी हालत हो, उम्मीद मत छोड़ो और कभी हार मत मानो।
ये तीनों निष्कर्ष वाकई बहुत गहरे हैं। और जाते जाते कोई एक ऐसा विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करे, गिल्बर्ट की किताब से ऐसा कुछ निकलता है?
हाँ, एक सवाल जो गिलबर्ट की इतनी विस्तृत जीवनी पढ़ने के बाद जहन में आता है वो ये कि क्या चर्चिल की वो बातें जो आज हमें विवादास्पद लगती हैं या उनकी कमजोरियां मानी जाती हैं, जैसे उनकी जिद या साम्राज्य को लेकर उनके विचार या युद्ध के प्रति उनका रवैया, क्या ये चीज़ें भी उनकी सफलताओं के लिए उतनी ही ज़रूरी थीं जितनी कि उनकी अच्छी बातें, खासकर 1940 में उनकी ज़रूरत को देखते हुए? मतलब क्या महानता हमेशा थोड़ी जटिल, थोड़ी विरोधाभासी ही होती है?
ये सोचने वाली बात है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।